ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 30 मई 2021 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्राविस्था और सामोहन। स्वर्णपथ: योहन्ना। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करते हैं वही उसके नियम धर्मी हैं। उत्तरदेय अध्ययन: पत्रस। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सुचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले स्नेह के नियन इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ हो। अब परमेश्वर, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युग युग रहे। आमीन। पाठ उपदेश बाइबल में से थसालुनीकियों। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक के धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगत ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा कहलाता है। तिमोथियस, पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयाहृत, क्षमाहृत, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घुमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धारेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। राज्य: बैतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का ये जन तो यहूदा से आया था, किस मार्ग से चला गया, सो उसके पिता ने उनसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वो उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांजोर रुख के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहाँ ना तू रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर को लौटा ले आ कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उसे झूठ कहा। और वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो मेज़ पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पुरखों के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसने उसे मार डाला। भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुतल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वो मेरी गवाही करें, वही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएँ। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरी अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। इफ़्सियों। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और निम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, और मेल के बंध में आत्मा की एक तार रखने का यत्न करो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य की ठग विद्या या चतुराई से उनके भर्म की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरुण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। इफ़्सियों। निंदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मुलेद लहू या मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झेलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सेहत प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। कृत्रिम निर्धावस्था या पशु चुंबकत्व को पहली बार जर्मनी में एक मेस्मर द्वारा 1775 में लाया गया था। अमरीकी साइक्लोपीडिया के अनुसार उन्होंने तथाकथित बाल पर विचार किया, जो उन्होंने कहा कि बीमारी को कम करने के साधन के रूप में एक दूसरे से अधिक जीवित जीवों द्वारा किया जा सकता है। उनके प्रस्ताव इस प्रकार थे। आकाशीय पिंडुओं, पृथ्वी और एनिमेटेड चीजों के बीच एक पारस्परिक प्रभाव मौजूद है। जानवरों के शरीर इस एजेंट के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जो नसों के पदार्थ के माध्यम से फैलते हैं। पशु चुंबकत्व के कामकाज के लिखे की अपनी तिपानियों ने उसे समझा दिया कि ये एक उपचारात्मक एजेंट नहीं है और इसका प्रभाव उन पर है जो इसका अभ्यास करते हैं और उनके विषयों पर जो इसका विरोध नहीं करते हैं, नैतिक और शारीरिक मृत्यु का कारण बनते हैं। यदि पशु चुंबकत्व रोग को कम करने या ठीक करने के लिए लगता है, परंतु ये उपस्थिति भ्रामिक है क्योंकि त्रुटि त्रुटि के प्रभाव को दूर नहीं कर सकती है। त्रुटि के तहत बेचैनी आराम के लिए बेहतर है। किसी भी उदाहरण में पशु चुंबकत्व का प्रभाव नहीं है, जिसे भ्रम के प्रभाव के अलावा अब हिप्नोटिज्म कहा जाता है। इससे प्राप्त होने वाला कोई भी लाभ गूद जादू में किसी के विश्वास के समान उपति होता है। पशु चुंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है जो वास्तविक समान जैसे पूर्ण और शाश्वत है और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और ना मानव की। विज्ञान पशु चुंबकत्व कृत्रिम निद्रावस्था या सम्मोहन में एक विश्वास और इस विश्वास के आधार पर पशु होना निकरामकता है जिसमें ना तो बुद्धि शक्ति है और ना ही वास्तविकता है और इस अर्थ में ये तथाकथित नश्वर मन की एक अवास्तविकता अवधारणा है। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। ध्रुव को सुई की ओर इशारा करना इस सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मन के आकर्षण का प्रतीक है। पशु चुंबकत्व के हल्के रूप गायब हो रहे हैं और इसकी आक्रामक विशेषताएं सामने आ रही हैं। अपराध के कारगह नश्वर विचार के अंधेरे अवकाश में चिपके हुए हैं। हर समय बुनाई जाले अधिक चितल और सूक्ष्म हैं। इसलिए रहस्य पशु चुंबकत्व की वर्तमान विधियां हैं कि वो अमर को आकारमनियाता में बदल देते हैं और उस विषय पर बहुत उदासीनता उत्पन्न करते हैं जो आपराधिक इच्छा करते हैं। मूर्तापूर्ण भ्रमों से तुरस्त संसार शिशुअवस्था के पालने में सो रहा है, घंटों सपने देख रहा है। भावतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवीयता धीरे धीरे पाप की भावना से आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक से सीखने की इच्छा मसीही जगत को जंजीरों से बांधती है। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है, इसकी तथाकथित निरंकुशता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बुराई के साम्राज्य को नष्ट करती है और पर्व में, परिवारों में और इसी तरह सामुदाय में स्नेह और सदाचार को बढ़ावा देती है। प्रेरित पौलुस बुराई के अवतार को इस दुनिया के देवता के रूप में सुंदर्भित करता है और आगे इसे बेईमानी और चालाकी के रूप में परिभाषित करता है। अधिक आत्मा अच्छाई अनंत भगवान और उनके विचार सभी में है, बुराई एक झूठ है। वास्तव में कोई नश्वर मन नहीं है और परिणाम अस्वरूप नश्वर विचार और इच्छा शक्ति का कोई संक्रमण नहीं है। जीवन और अस्तित्व ईश्वर के हैं। क्रिश्चियन साइंस में मनुष्य कोई नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि वैज्ञानिक विचार सच्चे विचार हैं, भगवान से मनुष्य के लिए गुजर रहे हैं। जब क्रिश्चियन साइंस और पशु चुंबकत्व दोनों को समझ लिया जाता है, क्योंकि वो दूर की तारीख में नहीं होंगे, तो ये देखा जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक को भेड़ के रूप में भेड़ियों द्वारा उतना अन्याय पूर्ण रूप से क्यों सताया और विश्वास किया गया था। जो कोई भी अपने विकसित मानसिक शक्तियों का उपयोग भागे हुए अपराधी की तरह ताज़ा अत्याचार करने के लिए करता है, जैसे अवसर मिलता है, वो कभी सुरक्षित नहीं होता। भगवान उसे गिरफ्तार कर लेंगे, ईश्वरीय न्याय उसे संभाल लेगा, उसके पाप उसकी गर्दन के चारों ओर चक्की के पाठ होंगे जो उसे अपमान और मृत्यु की गहराई तक तो ले जाएंगे। त्रुटि का बढ़ना उसके विनाश की भविष्यवाणी करता है और प्राचीन स्वयं सिद्ध की पुष्टि करता है, जिसे देवता नष्ट करते हैं वो पहले पागल करते हैं। सत्य को ईश्वर के अपने तरीके से त्रुटि को उजागर करने और नष्ट करने दें और मानव न्याय को ईश्वरीय स्वरूप दें। पाप को उसका पूरा दंड मिलेगा दोनों के लिए कि वो क्या है और जो वो करता है। न्याय पापी को चिन्हित करता है और नश्वर रोगों को सिखाता है कि वो ईश्वर के मार्ग के निशान को ना हटाएं। अपने ही नरक से ईर्ष्या करने के लिए न्याय झूठ को भेजता है जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। ये भावतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भावतिक विश्वासों को टूटना अकाल और महामारी, चाहत और शौक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं। जो तब तक इन चिरानों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता, ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी, जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। नश्वर त्रुटि एक नैतिक नसियानिक अकर्ण में गायब हो जाएगी। ये मानसिक किनोन शुरू हो गया है और जब तक विश्वास उपज की सभी त्रुटियों को समझाने तक जारी रहेगा। विश्वास परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक समझ अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे ये अंतर्ग्रहण समाप्त आता जाता है, वो दिव्य विज्ञान के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आकार देता जाएगा। जैसे जैसे भौतिक ज्ञान कम होता जाता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वास्तविक वस्तुओं को भावतिक की बजाय मानसिक रूप से पकड़ा जाएगा। इस अंतम संघर्ष के दौरान दुष्ट सोच वाले ऐसे साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा अधिक बुराई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन साइंस को समझते हैं, वो अपराध को रोकेंगे, वो त्रुटि की अस्वीकृति में सहायता करेंगे, वो कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और आनंदपूर्वक पारिपूर्णता की निश्चितता का इंतजार करेंगे। व्यापक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोर के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज़ उठाएगा, त्रुटि उतनी ही जोर से चिल्लाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का एक कर्तव्य होगा। तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारपुकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।